राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव राधा माधव राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे न Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jayo Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jagannatha Swami Nayana Pathagami Nayana Pathagami Baba Tume Jagannatha Swami Nayana Pathagami Nayana Pathagami Baba Tume Jagannatha Swami Nayana Pathagami Nayana Pathagami Baba Tume Jagannatha Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Masubhadra, Jaya Jagannath, Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita, Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari శ్రీల ప్రభుపాదకి సమవేత గౌర భక్త బృందకి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पनसहितं विष्णुचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरक्षिते नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है इस रविवार की प्रीतिवोध कार्यक्रम में। तो आज हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की कुछ कथाओं को सुनेंगे। जिस प्रकार हर रविवार को कृष्ण की कथा इस प्रकार से दोपहर को सुनते हैं, कीर्तन प्रवचन फिर प्रसाद, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है प्रभुपाद जी ने बनाया अपने लिए, है कि नहीं? बोर होने का चांस ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा कथा में बोर होते हैं ना, आंख लग जाता है। आज की कथा भी ऐसे ही आंख लगने वाला। आज आप लोगों को कृपा करके थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ये जो विषय के बारे जो विषय हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको हम सबको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए। अगर नहीं समझते हैं तो अपने अपने प्रभुजियों से काउंसलर से पूछना चाहिए इसके विषय में। आप लोगों की सुविधा के लिए, ये ऐसी चीजें हैं केवल बोलने पर उतना याद नहीं रहेगा, इसलिए हमने कुछ के लेके आए हैं जो कि हम आपको दिखाएंगे, और हम बतलाते समय आप उसको देखेंगे भी तो शायद थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, है ना? और ये जो कुछ भी हम अभी बताने जा रहे हैं, इसमें दिखाने जा रहे हैं, मैं पहले बताते हैं, सब कुछ भगवत गीता खास करके श्रील प्रभुपाद जी के भगवत गीता पर आधारित है, और हमने ये सब सीखा था शुद्ध सेवक प्रभु से और कमल लोचन प्रभु से। वो आप लोगों से थोड़ा शेयर करेंगे हम, है ना, आप लोगों को बतलाएंगे। आप सभी तैयार हैं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए? कोई तैयार नहीं? कितने लोग तैयार हैं? हरी वो। देखिए ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट और सेंटिमेंट समटाइम्स फैनाटिज्म, व्हाइल फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। हिंदी में, दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। पहले इस सेंटेंस को समझेंगे, फिर आगे के कथा चर्चा करेंगे। इस सेंटेंस में दो बातें बताया गया, धर्म और दर्शन। क्या क्या है? धर्म और दर्शन। इसको लगा देना उसमें, कैसे कर? धर्म और दर्शन, ये दोनों चीज साथ में होना चाहिए। दर्शन का अर्थ है फिलोसफी, ज्ञान, और धर्म, ये दोनों साथ में होना चाहिए। खास करके हम सब कैसे करते हैं, कई बार कई लोगों ने धर्म का पालन करते हैं, भक्ति करते हैं, मगर ज्ञान नहीं होता है। और कभी कभी ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत ज्ञान है मगर उनके अंदर भक्ति भाव नहीं है। ये दोनों सही नहीं है। भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए और ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी होना चाहिए। अगर किसी के पास केवल ज्ञान है प्रचुर मात्रा में, कौन सा ज्ञान? वो हमारा कॉलेज और स्कूल की ज्ञान भी नहीं, शास्त्रों की ज्ञान। अगर प्रचुर मात्रा में शास्त्रों की ज्ञान है मगर वो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तो केवल मेंटल स्पेकुलेशन है, मानसिक उहापोह। ऐसे बहुत लोग आपसे मिलेंगे, हम लोग हरे कृष्णा में आने के बाद ऐसे कई लोग हम लोगों से मिलते हैं, तर्क करते हैं, है ना, और वो लोग हमसे भी ज्यादा श्लोक जानते हैं, रामचरितमानस के चौपाइयां जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं वो लोग, और आप जितना श्लोक नहीं बोलेंगे इस्कॉन में आकर भी उससे ज्यादा वो लोग बोलेंगे, परंतु वो लोग कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, फिर वो कोई काम का नहीं, वो केवल मेंटल स्पेकुलेशन है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं बहुत भक्ति करेंगे, भगवान के सामने आके रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, सब करेंगे, मगर उनको ये ज्ञान नहीं होता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनके बीच में संबंध क्या है। इसीलिए ये एक प्रकार की भावुकता है, और ये भावुकता क्या होता है? क्षण भर में बदल जाता है। राधा गिरधारी के सामने लाएंगे उस भावुक व्यक्ति को, देख के एकदम रोने लग जाएगा, कीर्तन होएगा, हाथ उठा के नाचेगा, आपसे भी ज्यादा नाचेगा, उछलेगा, और बाद में उसको लेके शिव जी के मंदिर में खड़ा करेंगे शाम को आरती के समय, उधर भी नाचेगा रोएगा, और बाद में गणेश बाप्पा के अभी आ रहा है उनके सामने खड़े करेंगे, वो उधर भी नाचेगा गाएगा रोएगा। ये होते हैं भावुक लोग। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं। अतः दोनों चीजें आवश्यक है, ज्ञान भी होना चाहिए साथ साथ में भावुकता भी होना चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए। केवल भक्ति ज्ञान के बिना वो नहीं टिकने वाली है, और केवल ज्ञान भक्ति के बिना वो नहीं टिकने वाला है, ये दोनों सही नहीं है। इसीलिए ये जो सेंटेंस है ना, ये तीसरे अध्याय की तीसरे श्लोक की तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं इस सेंटेंस को, और इसको जब भी हमने पढ़ा बहुत अच्छा लगा। ये सही बात है, ज्ञान के बिना भक्ति कोई काम का नहीं, और भक्ति के बिना ज्ञान भी कोई काम का नहीं है। केवल ज्ञान है और भक्ति नहीं है, देखो उसका हृदय एकदम पत्थर जैसा रहेगा, सभी चीजों में तर्क करेगा, सभी चीजों को गलत साबित करेगा, मगर वो भक्ति नहीं करेगा। वो इसी दोनों होना जरूरी है। तो हम सब ये न के न प्रकार श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, या अपने पुण्य कर्मों से क्या किए, इस हरे कृष्णा मूवमेंट में जुड़ गए हैं। तो हम सबको इस ज्ञान भी होना चाहिए साथ साथ में भक्ति भी करनी चाहिए, थोड़ा बहुत ये ज्ञान भी हमको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो केवल भावुकता होगा और हम भी एक दिन ऐसे ही करेंगे, कुछ दिन आएंगे। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ कि वे लोग इस्कॉन में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में बहुत दिनों से हैं, हरे कृष्णा सोलह माला जप करते हैं, दीक्षा भी लिए हुए हैं, मगर वो लोग क्या करते हैं, दूसरे मंदिरों में जाकर उधर पूजा पाठ भी करते हैं, दूसरे कहीं पे जाके मानस भी पढ़ते हैं, कहीं पे कुछ और भी करते हैं, दक्षिणा मिलता है उनको, फिर यहाँ पे आके एक दीक्षित भक्त जैसा भी बैठते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि ज्ञान के अभाव के वजह से वो सोचते हैं ये भी धर्म कार्य है, वो भी धार्मिक कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने को, व्यवसायत्मिका बुद्धि होना चाहिए, एक ही जगह स्थिर होना चाहिए, है ना। अगर कोई पत्नी अपने पति को छोड़ के दूसरे दूसरे पुरुषों के पास मन रखेगी और उधर उधर जाया करेगी, उसको क्या बोला जाएगा? वेश्या, है कि नहीं? ठीक वैसे हम श्री कृष्ण को अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं और दीक्षा लेते हैं, श्री गुरु परंपरा में हमारा संबंध जुड़ गया है, फिर भी हम दूसरे दूसरे मंदिरों में जाएंगे, दूसरे दूसरे का पूजा पाठ करेंगे दक्षिणा की इच्छा से, कुछ फायदे की इच्छा से, तो फिर उसको क्या बोला जाएगा? ये सब क्यों होता है? इसके अभाव से, ज्ञान के अभाव से, और कभी कभी ज्ञान होता है तो भक्ति के अभाव से, ये दोनों व्यक्ति ऐसे करते हैं। अतः हमें अत्यंत ध्यानपूर्वक इसको सुनना चाहिए। ठीक है, हर एक व्यक्ति उतना हद तक नहीं समझ सकता है, अपने बुद्धि के हिसाब से ही और श्री कृष्ण की कृपा से वो थोड़ा बहुत समझ सकता है, मगर थोड़ा तो ये नॉलेज होना ही चाहिए भक्ति के साथ साथ। इसीलिए हमारे इस्कॉन में देखेंगे, लोगों को केवल भावुक नहीं बनाया जाता है, केवल आप जपा करो बहुत अच्छा लगेगा, मैंने जपा किया बहुत अच्छा लगा, और मैंने राधा गिरधारी के पास आके प्रार्थना किया तो मैं एग्जाम में पास हो गया, मेरा बिजनेस अच्छा चल गया, ये नहीं बताते हैं हमारा जीवन सुधर गया। नहीं, पहले ये आत्मा का ज्ञान प्रदान किया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी ये इस्कॉन का सिस्टम को ऐसे बनाया, देखिए सुबह 8 बजे श्रीमद भागवत के ऊपर क्लास, शाम को भगवत गीता के ऊपर क्लास, इसके अलावा प्रतिदिन शाम को कुछ ना कुछ क्लासेस होते हैं, उसके अलावा प्रति रविवार को सबके लिए क्लासेस हैं। इतने सारे क्लासेस क्यों? आप जाके कोई भी संस्था में देखिए, इतने सारे सिस्टमेटिक ये बेसिक लिटरेचर पढ़ाने के लिए क्लासेस ही है। श्री प्रभुपाद जी ने इसलिए ऐसा किया, और उन्होंने बहुत प्रेशर दिया इसमें, ये शास्त्र की नॉलेज के लिए, गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। क्यों हम वितरण करते हैं? कि ये ज्ञान सबके पास थोड़ा थोड़ा पहुंचे, फिर वो भक्ति करे ना। दोनों साथ साथ में होना चाहिए, भक्ति तो बहुत अच्छा है मगर साथ साथ में ज्ञान भी होना चाहिए। केवल भावुक लोगों को भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत निंदा करते थे। एक बार मजे की बात है हमारे यहाँ की, एक बार कई पुरानी कथा है हमारे यहाँ मंदिर के, एक भक्त थे, नए भक्त थे, वो कीर्तन चल रहा है, वो सुने थे बहुत शास्त्रों को कि कृष्ण कीर्तन में भावुक होना चाहिए, रोंगटे खड़े होना चाहिए, छटपटाते हैं, नाचते हैं, है ना, ये सुने हैं। तो अचानक क्या किया, उन्होंने छटपटाने लगे, नीचे गिर के रोने लगे, तो कमल लोचनपो को खबर गया, कमल लोचनपो ने आए उसका कान पकड़ के बाहर लेके 2 चमाचा मारे उसको, है ना। तो इस प्रकार का भावुकता दिखाने पर भक्ति सिद्धांत महाराज इसको बहुत निंदा करते हैं और इसको तुरंत मार के रोकने के लिए बोलते हैं, आथाने की भावुकता इसको कहा जाता है, ना? इसके पीछे एक कथा भी है। तो इस प्रकार की भावुकता कोई काम का नहीं है, है ना, कुछ दिन तक रहेगा फिर वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये दोनों होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए और साथ साथ में ये भावुकता या भक्ति भी होनी चाहिए। इसीलिए हम इस थोड़ा सा ज्ञान के बारे में और भक्ति के बारे में ध्यान डालेंगे। खास करके ये सारा संसार का जो ज्ञान है ना, वो किसमें निहित है मालूम है? वेदों में। किसमें? वेदों में। वेद संपूर्ण संसार की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका भंडार है, डिपो है ना, स्टोर हाउस है नॉलेज का, वेद। ये वेद शब्द वित्त से आता है, और सारा वेद जो है, इस वेद का निचोड़ करके व्यासदेव जी ने किसमें रख दिया है? भगवद गीता में। किसमें रखा? भगवद गीता में। सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन, वो शंकराचार्य जी भी कहते हैं, अगर सारे उपनिषदों को गाय के रूप में तुलना किया जाए तो बछड़ा कौन है? अर्जुन, है ना। और कृष्ण कर क्या रहे हैं? ये वेद रूपी गाय से दुहन कर रहे हैं दूध को, और वो दूध क्या है? गीता का ज्ञान। और पिला किसको रहे हैं? अर्जुन को, है ना। शंकराचार्य जी भी इसको स्वीकार करते हैं। फिर सारे वेदों का जो निचोड़ है, वो सार है, वो किसमें रखा गया है? श्रीमद् भगवद गीता में। हम आज श्रीमद् भगवद गीता के कुछ चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे 1 घंटे की इस कक्षा में श्रीमद् भगवद गीता के कुछ हद तक समझने के लिए। वैसे आप सब सोचते रहेंगे क्या प्रभु जी कुछ कथा सुनाएंगे, रोचक है ना, स्टोरी सुनाएंगे, सोचा था गीता चालू कर दिया। गीता तो हमेशा सुनते ही रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, किधर भी सुनते गीता ही बोलते, आप भी ये संडे के दिन में भी गीता, है कि नहीं। तो ये गीता इतना आवश्यक है कि एक नियोफाइट, एक नया भक्त से लेके वो व्यक्ति कितना भी प्रगत क्यों ना हो, भक्त उनके लिए गीता की आवश्यकता है ना। एक नया भक्त से लेके एक ऊंचे कोटि के है ना एकदम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने वाले व्यक्ति तक इस गीता उसको आवश्यक है। इसलिए ये गीता हर समय साथ में होना चाहिए और उसको समझना चाहिए। जितना हद तक समझते रहेंगे तब तक पता लगेगा थोड़ा सा समझ में है ना। तो थोड़ा सा एक झलक डालेंगे पूरी गीता के ऊपर है ना, पूरे गीता के ऊपर एक घंटे में झलक डालेंगे। और सभी भक्त कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे और देखेंगे भी। ये भगवद गीता को एकदम से याद रखना है ना, तो इस प्रकार से याद रखना चाहिए। भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? पक्का 18 है। ये 18 अध्याय को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ये पूरी गीता को याद करने के लिए एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, एकदम से याद रहेगा ऐसा। पूरे गीता में 18 अध्याय हैं, ये 18 अध्याय को 3 भाग में विभक्त किया जा सकता है और 3 प्रकार के ज्ञान उसमें कृष्ण बतलाते हैं। पहला अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक, 1 से लेकर 6 अध्याय तक कृष्ण ने कर्म योग के बारे में बतलाया। क्या बतलाया? कर्म योग। और 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक कृष्ण बतलाया भक्ति योग के बारे में। किसके बारे में? और 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक ज्ञान योग। ये बहुत सुंदर सा सैंडविच है, कर्म ज्ञान के बीच में क्रीम है। किसका क्रीम? कृष्ण प्रेम का, है ना। कर्म योग है, अंत में भक्ति ज्ञान योग है, और बीच में क्या है? भक्ति योग। एक सैंडविच जैसा है। कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन को इस ज्ञान को प्रदान करते हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये पूरी भगवद गीता है। अच्छा, ये पहले समझना चाहिए। भगवद गीता को योग शास्त्र कहा गया है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। सुनाना, ये योग शास्त्र, उसको योग शास्त्र कहा गया है। क्यों योग शास्त्र कहा गया पता है? क्योंकि योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। योग शब्द का अर्थ क्या है? ये भगवद गीता या ये शास्त्र ऐसा शास्त्र है कि हमें यानी जीवात्मा को परमात्मा के साथ क्या करता है? जोड़ देता है। अतः इसे योग शास्त्र कहा गया। और एक बात बताऊं, भगवद गीता के हर एक अध्याय के नाम के पीछे योग करके लिखा गया है। पहले भाग देखते हैं, यह पहला भाग है, यह 6 अध्यायों का नाम मैंने लिखा, बाकी 12 अध्यायों का नाम आपको ढूंढना चाहिए। पहला अध्याय का नाम प्रभुपाद जी ने लिखते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ऐसा लिखे है ना, वो हम लोगों को आसान करने के लिए प्रभुपाद जी ने लिखे। असलियत में पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। सेकंड चैप्टर का नाम है सांख्य योग। थर्ड चैप्टर है कर्म योग, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विभाग योग, कर्म संन्यास योग और ध्यान योग। ऐसे आगे पूरे 18 अध्याय का नाम फिर बाद में योग 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 लिखा हुआ है, इसलिए इसको योग शास्त्र कहा गया है। और योग का अर्थ क्या है? जोड़ना। ये गीता शास्त्र क्या करता है? हमें यानी जीवात्मा को परमात्मा के साथ यानी भगवान के साथ जोड़ने का ज्ञान को प्रदान करता है, इसलिए इसको योग शास्त्र कहा गया है। समझ में आया? ये भगवद गीता कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। परंतु ये 3 भागों के बारे में प्रभुपाद क्या कहते हैं उसको थोड़ा देखेंगे। ये प्रभुपाद जी की वाणी है। प्रभुपाद जी 18 अध्याय की पहला श्लोक के तात्पर्य में ये सेंटेंस कहते हैं, प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है। ये कर्म, भगवान की सेवा, सेवा मतलब काम करना, किसके लिए? कृष्ण के लिए, उसे कर्म योग कहा जाता है। कर्म मतलब काम, योग मतलब जो कर्म हमें कृष्ण के साथ संबंध को जोड़ता है वो कर्म। कभी कभी लोग ये दावा करते हैं कि हम तो कर्म योग हैं, हम तुम्हारे भक्ति योग नहीं करते, हम तो प्रतिदिन ट्रेन में हाथ ऊपर उठा के जाते हैं कंपनी और वापस शाम को आते हैं, यही हमारा कर्म है। कृष्ण ने ये बुक करने के लिए बोला, कर्म करने के लिए बोला। ये कर्म योग नहीं है। कर्म मतलब काम, योग मतलब जोड़ना। वो कर्म जिस काम करने पर हमारा संबंध कृष्ण के साथ जुड़ता है उसे कर्म योग कहा जाता है। वो कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु, इतना याद रखते हैं, उसके आगे क्या बोला कृष्ण ने उसको भूल जाते हैं, बोलते ही नहीं है, है ना। ये सारे चीजें हम थोड़ा बहुत आज देखेंगे। इसलिए प्रभुपाद पहला सेंटेंस क्या लिखते हैं, प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का परम लक्ष्य है। ये कर्म कौन सा, सेवा कौन सा कर्म करना चाहिए, श्री कृष्ण की सेवा, ये कर्म योग है। सेकंड, प्रथम छह अध्याय में भक्ति योग पर बल दिया गया है, अगले छह अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों और भक्ति का वर्णन है, और भगवद गीता के तृतीय खंड में, खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। ये तीन चीजें प्रभुपाद कहते हैं, पहला छह अध्याय, बीच का छह अध्याय और अंत का छह अध्याय। प्रभुपाद जी के हिसाब से तीनों जगह कृष्ण भक्ति के बारे में ही बताया गया है, अर्थात पूरी भगवद गीता में केवल कृष्ण भक्ति के बारे में ही बताया गया है। ये श्रील प्रभुपाद जी का कथन है, ये ज्ञान है वैष्णव सिद्धांत। इसके अलावा कई सारे भगवद गीता के किताबें हैं, आप उन सारे किताबों को पढ़ेंगे तो कर्म योग मतलब कर्म करने के लिए बोलेंगे, ज्ञान योग मतलब अष्टांग योग के जगह पे अष्टांग योग ध्यान करना चाहिए, ऐसे करके तात्पर्य लिखा जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी के गीता को कई लोगों ने क्या क्रिटिसाइज करते हैं कि ये प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ने हरेक जगह उसने भक्ति योग ही बताया, सांख्य योग मतलब भक्ति योग बोलते हैं, अष्टांग योग मतलब भक्ति योग बोला है, ज्ञान योग मतलब भक्ति योग बोला है, इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी ने गलत बताया है, ऐसे कई लोग कहते हैं। इसलिए हमें जानकारी होना चाहिए, अगर जानकारी नहीं होगा तो उस श्लोक में जो लिखा है उस व्यक्ति ने जो बोलेगा हम उसको मान जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। इसलिए पूरी भगवद गीता ये योग शास्त्र है और पूरे एक नंबर अध्याय से लेकर 18 नंबर अध्याय तक केवल भक्ति के बारे में ही बताया गया है, ये प्रभुपाद जी का कहना है। कैसे हम आगे चल के देखेंगे। ये विभाग एक है जो एक पहला अध्याय से छठा अध्याय तक है, ये पहला अध्याय है। पहला अध्याय का नाम है सैन्य दर्शन, कुरुक्षेत्र स्थल में सैन्य दर्शन, सेनाओं को देखना। ये अध्याय महत्वपूर्ण है गीता को शुरू करने के लिए। ये सभी लोग जानते हैं ना भगवद गीता कैसे चालू हुआ, है कि नहीं। दो भाइयों में झगड़ा, हाँ, दो भाइयों में झगड़ा किसके लिए, प्रॉपर्टी के लिए। अंबानी ग्रुप में झगड़ा हुआ था ना, ठीक वैसे कौरव ग्रुप ऑफ कंपनी में झगड़ा हुआ, एक ग्रुप बन गया पांडव और एक ग्रुप बन गया कौरव। वैसे ये दोनों कौरव वंश के ही है, क्या पांडव कौरव नहीं थे, वो भी कौरव ही थे, मगर वो पांडु के पुत्र हुए तो धृतराष्ट्र ने जानबूझ के पांचों भाइयों को अलग कर दिया। माम कहा पांडवा सेवक की मकुर्वत संजय हो, उस शब्द से उसने अलग किया, अब परिवार को उसने तोड़ा धृतराष्ट्र ने, है ना, मेरा पुत्र और पांडु के पुत्र कहके उसने अपने ही परिवार में दीवार खड़ा कर दिया, किसने, धृतराष्ट्र ने, और उनका संपत्ति हर लिया था। फिर दोनों में झगड़ा हुआ, वनवास हुआ, बाद में उन्होंने मांगे उनको दिया नहीं, तब ये महाभारत युद्ध छेड़ा। फिर उनके सेना, इनके सेना आमने सामने हुआ, अर्जुन ने देखा किसके साथ युद्ध करना है, तो वो अपने सारथी, अर्जुन के सारथी कौन थे, वो कृष्ण, भगवान कृष्ण को बोलते हैं सेनेयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मैं अच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके खड़ा करो, क्यों, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मैं किसके साथ लड़ाई करने जा रहा हूं, युद्ध करने जा रहा हूं। तब कृष्ण बोले कि ये कहां से दिमाग आया, उसने गाड़ी को लेके गया, दोनों सेनाओं के बीच में रख दिया, और वो जानबूझ के किसके सामने रखा मालूम है, भीष्म और द्रोण के सामने ही लेके खड़ा किया अपने रथ को। और जैसे अर्जुन ने भीष्म को देखे, द्रोण को देखे, बोले कि अरे ये तो मेरे सगे संबंधी है, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, ये लोग मेरे से लड़ने के लिए आए हैं। तब अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुआ, करुणा उत्पन्न हुआ, ये सब तो मेरे सगे संबंधी है, पुत्र हैं, पौत्र है, साला है, मामा है, दादाजी हैं, गुरुजी हैं, गुरु भाई है, इन लोगों को मैं कैसे मार सकता हूं। अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या बोला कृष्ण ने, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण कुछ नहीं बोले, खाली चुपचाप सुन रहे हैं। अर्जुन अपना तर्क देते गया कि मुझे युद्ध नहीं करने का है। क्यों नहीं करने का, बहुत सारा कारण बताया, पांच मुख्य कारण बताता है अर्जुन कि मैं युद्ध नहीं करूंगा करके। नीचे देखिए अर्जुन का युद्ध ना करने का पांच कारण। अर्जुन कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है और उसने ये कारण बताता है, और ये सारा कारण शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे तो सही है, फिर भी इन सारे कारणों को खंडन करते हुए कृष्ण ने अंत में अर्जुन को कन्विंस किया कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और उतना कन्विंस करते करते संसार की पूरा ज्ञान को इस 700 श्लोक और 18 अध्याय में रख दिए कृष्ण ने, किसके लिए, हम सब के लिए। माध्यम बनाया अर्जुन को, माध्यम बना के ज्ञान प्रदान किए हमारे लिए। पहला कारण क्या है कि हे कृष्ण मैं इनको नहीं मार सकूंगा, ये सब मेरे सगे संबंधी है, इनको मारूंगा तो मुझे दुख लगेगा। हमारे सामने भी कभी कभी ऐसे परिस्थिति आता है ना, सगे संबंधियों के विरुद्ध जाना पड़ता है कई कामों में, है ना। तो ये अर्जुन कहते हैं करुणा उत्पन्न हुआ कि इसको कैसे मैं मार सकता हूं। दूसरा कारण बताया कि भोग, अगर मैं इनको मार दूंगा तो मैं राजा बन के क्या फायदा होगा फिर, क्योंकि कुछ भोग करने के लिए कुछ लोग देखना तो चाहिए। मैंने एक बहुत अच्छा सा गैलेक्सी टैब लिया, मोबाइल अभी आया नया, बहुत अच्छा। अगर मैं सबके सामने ऐसा लेके नहीं घूमूंगा और लोग देखेंगे नहीं तो क्या फायदा उस मोबाइल को लेके, आप समझ पा रहे मेरी बात को। मैंने 5000 वाला एक जीन पैंट पहना और टी शर्ट 2000 का पहना, और सबके सामने मैंने दिखाऊंगा और कोई देखेगा नहीं तो उस टी शर्ट का जीन पैंट का क्या फायदा। तो भोग करने के लिए भी लोग देखना चाहिए अपने को, है कि नहीं, है ना। अपने घरों में टीवी आता है, प्रभु जी लाते हैं तो हम कितने आजू बाजू के बुलाते हैं ना, माता जी लोग, मेरे प्रभु जी ने टीवी लाया, हम ऐसा करते हैं। तो अर्जुन ऐसे ही सोच रहे थे, अगर मैं युद्ध करूंगा और सब लोग मरे जाएंगे, मरने के बाद मैं राजा बनूंगा तो कौन देखेगा। अच्छा, दूसरा, मैं युद्ध करते करते सभी लोग को मार दूंगा और मैं जीत जाऊंगा, और जीतने के बाद मैं किसको दिखाऊंगा कि मैं जीत गया करके, क्योंकि जिसने मुझे धनुर्विद्या सिखाया था वो भी तो मारा जाएगा, क्योंकि वो तो उनके पक्ष में है, और जब तक वो मरेगा नहीं तब तक मैं जीत नहीं पाऊंगा द्रोणाचार्य जी, और वो द्रोणाचार्य मर जाएंगे, मैं किसको जाके बताऊंगा कि आपने अच्छा सिखाया था करके। और वो दादाजी जो भीष्म देव इतना प्रेम करते, इतना चाहते हैं मुझे, और वो भी मारे जाएंगे, मैं जीतने के बाद किसको जाके बोलूंगा कि सारा अधर्म को साफ कर दिया, धर्म का स्थापना हुआ करके, वो भी नहीं रहेंगे, इसलिए मैं जीत के भी सुखी नहीं हो पाऊंगा। ये एक कारण बताया, कृष्ण सुन रहे हैं चुपचाप। तीसरा कारण बताता है कि ओ इनको मारूंगा ना मुझे पाप लगेगा, भले ही ये लोग आतताई है, ठीक है, इन्होंने भीम का जान लेने के लिए ट्राई किया, आग लगा दिया घर में, स्त्री का अपहरण किया, उनका बेइज्जती किया, धन को हड़प लिया, सब कुछ किया, इनको जान से मार देना चाहिए नीति शास्त्र के हिसाब से। मगर अर्जुन कहता है कि धर्म शास्त्र के हिसाब से ऐसे लोगों को मारने पर भी पाप लगता है, इसलिए मैं नहीं मारूंगा। और सामाजिक कारण, अगर मैं इन्हें मारूंगा तो सभी बुजुर्ग लोग मारे जाएंगे, स्त्रियों को सिखाने वाला कोई नहीं रहेगा, स्त्रियां हमें अपना कुल को लांग करो दूषित हो जाएंगे, उनकी गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगा वो अवांछित संतान, अनवांटेड पीपल, यानी जो आवश्यक नहीं है संसार में, समाज में, वो पैदा हो जाएंगे, और वो पैदा होके धर्म के कार्य पिंडदान इत्यादि नहीं करेंगे, और पिंडदान नहीं करेंगे तो जो पितृ लोग है वो नरक में जाएंगे, और यहाँ के लोग अधर्म करेंगे ये भी नरक में जाएंगे, और दोनों नरक में जाने के पीछे कारण कौन बनेगा? अर्जुन। इसलिए अर्जुन बोला कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। अंत में बोलता है कि सर पकड़ लिया हमने, जो समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए क्या अच्छा है वो मुझे पता नहीं, कृपया कृष्ण आप मुझे बताइए, ये अंत में बोलता है। तो इस प्रकार से जब भी बोला, श्री कृष्ण बीच में एक शब्द बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं मालूम है? कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यं जुष्टमस्वर्ग्यं अकीर्तिकरम अर्जुन, बीच में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मालूम है? कृष्ण और अर्जुन दोनों संबंधित है। कौन सा संबंध था दोनों के बीच में? दोनों दोस्त थे, है कि नहीं? अभी सोचो दो दोस्त मिलके एग्जाम में गए, और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर भी मिल गया, आंसर शीट भी मिल गया, पेन लेके खड़ा है, दूसरा दोस्त बोल रहा है कि हे दोस्त मेरा हाथ कांप रहे हैं, पसीना छूट रहा है और मैं अभी एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, तो दूसरा दोस्त क्या बोलेगा? बकवास मत कर, सब लोग देख रहे हैं, सिन्हा थान के हॉल में आ गया है, चुपचाप जो आता है वो लिख डाल। तो कृष्ण वही किया, क्योंकि अभी दोस्त के रूप में है ना, तो कृष्ण कहते हैं कुतस्व कस्मलम इदम विषमे, अरे ऐसे गंदगी तुम्हारे अंदर कहां से आ गया अचानक ऐसे समय पे? ये आर्यों का काम नहीं है, इसको त्यागो। तब अर्जुन सोचे कि क्या इसको मैंने कुछ ज्ञान देने के लिए बोलता है तो मुझे फटकार के चुप हो गया, कुछ बोल भी नहीं रहा। तभी और डाउट हुआ, फिर उन्होंने और बोलने लगा, ओ कृष्ण गुरु ने हत्या ही महानुभाव, मैं कैसे मैं गुरुजी को मार सकता हूं? क्या तुमने आपके गुरुजी को मारा था क्या? संदीपनी मुनि को तुमने मारा, तुम तो अरिशूदन है ना, शत्रुओं को मारा था ना, तो मुझे क्यों मेरे दादाजी को मारने के लिए बोल रहे हो, मेरे गुरुजी को मारने के लिए बोल रहे हो? ऐसे करके अर्जुन तर्क करते हैं। फिर आगे दूसरा अध्याय चालू होता है 11 नंबर श्लोक से, उससे पहले दूसरे अध्याय के बारे में थोड़ा देखेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने दूसरे अध्याय के बारे में बहुत अच्छा बात बताया, इसीलिए आज मैंने ये दूसरा अध्याय को सुना समझाने के लिए, क्योंकि ये दूसरा अध्याय का नाम प्रभुपाद जी ने क्या लिखा मालूम है? गीता का सार। अर्थात पूरे 18वां अध्याय अगर पढ़ेंगे, एक अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक जो पूरी गीता है वो दूसरे अध्याय में समा हुआ है, दूसरे अध्याय में पूरे होल गीता है। इसीलिए दूसरे अध्याय का नाम प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? गीता का सार। और ये कहां से लिया प्रभुपाद जी ने? भक्ति विनोद ठाकुर से। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है, और भगवद गीता के प्रतिपद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। मैंने आपको दिखाया था है ना, भगवद गीता में तीन चीजें हैं, कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में और भक्ति के बारे में। तो ये दूसरे अध्याय में ज्ञान के बारे में भी है, कर्म के बारे में भी है और भक्ति के बारे में भी है। इसीलिए अगर दूसरे अध्याय को थोड़ा बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो पूरा भगवद गीता आइडिया आ जाएगा। समझ में आया? ये दूसरे अध्याय है, इसीलिए दूसरे अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पूरी दूसरे अध्याय में 72 श्लोका से 72 श्लोक हैं। देखते हैं कितना हद तक हम लोगों ने आज समझ पाते समय के हिसाब से। ये देखो पूरे दूसरे अध्याय का सार है, पूरी भगवद गीता का सार इसमें समाया हुआ है। 1 से लेकर 10 तक अर्जुन के और कुछ शंकाएं था और कुछ डाउट था वो पूछ डालता है। 11 नंबर से असली भगवद गीता चालू होता है, और 11 नंबर से 30 नंबर तक भगवान ने ज्ञान प्रदान करते हैं, आत्मा का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ये आत्मा का ज्ञान आध्यात्मिक जीवन का पहला सोपान, मतलब पहला स्टेप है। आत्मा के ज्ञान के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होना ही चाहिए। इसीलिए हमारा इस्कॉन के द्वारा हर जगह आप लोग देखते रहेंगे 7 डे कोर्स होता है ना, सेल्फ डिस्कवरी है ना, आत्म अन्वेषण की यात्रा ऐसे करके होता है ना कोर्सेस। कितने लोगों ने अटेंड किया ये कोर्स? 7 दिन का गीता कोर्स, देख कुछ ही लोगों ने अटेंड किया, सभी लोगों को अटेंड करना चाहिए। तो ये आत्मा का ज्ञान है, इसलिए हमारे इस्कॉन के द्वारा पहला प्रोग्राम ये है। फिर उसमें जो लोग आते हैं थोड़ा बहुत ज्ञान आता है उनको, फिर उन लोगों ने हरे कृष्ण में आ जाते हैं, है ना, ये हमारा सिस्टम है, ये आत्मा का ज्ञान। फिर 31 नंबर श्लोक से 38 नंबर श्लोक तक भगवान ने कर्म के बारे में बताया, कर्मकांड है ना, कर्मकांड मतलब रिचुअल्स, कुछ काम करेंगे कुछ फायदे के लिए, करते हैं ना हम लोग दान यज्ञ इत्यादि, है ना, वहां पे फोटो है देखिए। और 39 नंबर श्लोक से लेके 53 नंबर श्लोक तक बुद्धि योग के बारे में बताया, और 54 से 72 तक समाधि जो कि भक्ति के बारे में है। तो ये पूरी दूसरे अध्याय है, और ठीक यही पूरी भगवद गीता में एक्सप्लेन किया गया है। जय श्री राधा गिरिधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। अतः अगर हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय को थोड़ा बहुत समझते हैं तो हम पूरी भगवद गीता को समझने जैसा है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी और श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं ये दूसरे अध्याय जो है भगवद गीता का सार है। तभी अर्जुन की शंका है, अर्जुन की शंका के बाद अर्जुन बोलता है कि जब कृष्ण ने डांटा ना कुतस्ता कस्मण मिजम, तभी अर्जुन बोलते हैं कि अर्जुन सोचने लगे हैं कृष्ण दोस्त के फ्रेंड है इसीलिए मुझे वो सलाह नहीं दे रहा है, मैं अगर उनकी शरण में जाऊंगा उनको गुरु बना दूंगा तभी वो मुझे सलाह दे सकते हैं। इसीलिए फिर वो कहते हैं कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मोढते ता यस्येह सन्निश्चितं ब्रीहितं मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रभा, मैं तुम्हारा शिष्य बन रहा हूं हे कृष्ण। तो शिष्य बनने से क्या होगा, कृपया मुझे ये बताइए मेरे लिए क्या श्रेय है और क्या श्रेय नहीं है, मेरे लिए क्या श्रेय है वो बताइए। दो चीज होता है हमारे लिए, एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस, ये हम सबको जानना चाहिए। श्रेयस और प्रेयस, प्रेयस हमको अच्छा लगता है और श्रेयस हमारे लिए अच्छा है। प्रेयस हमको अच्छा लगता है मगर श्रेयस हमारे लिए, उदाहरण देता हूं, जो लोग बीड़ी पीते हैं, कितने लोग बीड़ी पीते हैं, तो बीड़ने के लिए अपने को अच्छा लगता है ना, उस व्यक्ति को अच्छा लगता है, क्या बीड़ी पीना उसके लिए अच्छा है ना। कोई कोई दारू पीने का नशा होता है तो दारू पीने के लिए उसको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, इसीलिए तो पीता है। क्या दारू पीना उसके लिए अच्छा है, इसलिए दो चीजें, प्रेयस मतलब जो हमको अच्छा लगता है, हमें क्या अच्छा लगता है, अच्छा खाना अच्छा सोना, और अच्छा क्या नहीं लगता है, जब करना अच्छा नहीं लगता है, भगवद गीता का क्लास सुनना अच्छा नहीं लगता है, मगर हमारे लिए अच्छा है गीता क्लास सुनना और जपा करना, और अच्छा क्या नहीं है, ज्यादा सोना और ज्यादा खाना। तो दो चीज संसार में होता है अपने लिए भी, श्रेयस और प्रेयस। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण मेरे लिए श्रेय क्या है, यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रीहितन में, मेरे लिए श्रेय क्या है वो बताइए। ये अंतर है देवताओं में भगवान कृष्ण में, भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्त को उसकी भक्त के लिए क्या अच्छा है वही देते हैं, मगर देवता लोग उनको जो अच्छा लगता है वो दे देते हैं। कोई जाएगा हे मारुति मुझे कृपया एक मारुति 800 दे दीजिए, हनुमान जी के पास जाएगा मुझे सुंदर पत्नी दे दीजिए बेचारा ब्रह्मचारी है, शिव जी के पास जाके घंटी पीटेंगे जब तक वो उठेंगे नहीं, बोलेंगे परेशान मत कर जो चाहिए वो लेके जा, ये देवता हैं। भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है। उदाहरण दो, एक बच्चा 5 रुपया लेके जाएगा दुकानदार को, बोलेगा भाई साहब 555 सिगरेट चाहिए, वो पैसा रखेगा 555 सिगरेट देगा, उसको क्या लेना देना, उसको पैसे से बिजनेस से मतलब है। ठीक वैसे देवता लोग है, आप अगर देवताओं की पूजा करेंगे और उनकी सांत्वना करेंगे तो उनकी आवश्यकता पूरा होगा तो तुम्हारा आवश्यकता भी पूरा कर देंगे, जैसे हिरण्यकश्यपु। ओहो इस प्रकार का वर आज तक किसी को मिला नहीं है, फिर भी आपने तो इतना तपस्या किया ना, तथास्तु। खुद बोल रहे ब्रह्मा जी ऐसा वर किसी को मिला नहीं और किसी को मिलेगा भी नहीं, फिर भी बोल रहे तुमने किया ना इतना तपस्या इसलिए मैं तुमको देता हूं। ये है देवता, जैसे दुकानदार 5 रुपया देगा तो दे देगा सिगरेट, पिताजी के पास जाके वही बच्चा बोलेगा पिताजी पिताजी 5 रुपया लेके मुझे 555 दीजिए ना, 5 रुपया लेके जेब में रख के 555 बजा देगा काल में। ये भगवान श्री कृष्ण है। अगर हम जाके उनको भौतिक सुख मांगेंगे तो हमको देने वाले नहीं है। वो जानते हैं ये मूर्ख मुझे विशेष सुख मांग रहा है, मगर मैं थोड़े विशेष सुख देने वाला हूं, मैं मेरा स्व चरणामृत दिया विषय भुलाई वो, इसका विषय को भुला दूंगा मैं मेरा चरणामृत देके। ध्रुव महाराज की उदाहरण देखो, ध्रुव महाराज ने गए थे भगवान की तपस्या की है, किसके लिए? मुझे मेरे पिताजी के दादाजी से भी बढ़कर राज्य चाहिए, है ना। मगर जब श्री कृष्ण के दर्शन हुआ, भगवान ने अपना शंख को गाल में लगा दिया, बोलते हे भगवान मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आया था, अभी तो हीरा मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं 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 तुमको राज्य नहीं, नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भुला देते हैं सब कुछ। ये श्री कृष्ण है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति देवी देवताओं के पास नहीं जाते हैं, राधा गिरधारी के पास आते हैं, है ना। तो इसलिए अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण मेरे लिए श्रेय क्या है वो मुझे दीजिए कृपया। तब भगवान ने नंबर लोग से ये गीता का ज्ञान देना चालू करते हैं। वो क्या चालू करते हैं? असत्यानन्व सतस्तम प्रज्ञावादम से भाषसे घटासन मगता सूचना न सोचंती पंडिता। पहले थोड़ा सा हंसते हैं, क्यों हंसते हैं मालूम है? अर्जुन अभी तक दोस्त जैसा बातें कर रहा था ना, अभी अचानक उसने बोला कि हे कृष्ण आप मेरे गुरु हो। अभी दोस्त को कोई गुरु बोलेगा तो थोड़ा हंसी आएगा ना, इसलिए भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर मुस्कुरा के तुरंत गुरु का पदवी धारण किया। और गुरु का पहला कर्तव्य क्या है मालूम है? शिष्य को उसकी गलती पर उसको फटकारना। अगर कोई गुरु शिष्य बहुत दंडवत मारता है, बहुत डोनेशन देता है, बहुत पूजा करता है करके उसको गलतियों को नहीं सुधारता है, तो वो गुरु सही गुरु का पदवी को पालन नहीं करा है। ऐसे चापरूसी गुरुओं के पास नहीं जाना चाहिए। शिष्यों को जो श्लोक जो मंत्र अच्छा लगेगा वही देगा, उसको मांस मच्छी अच्छा लगता है खाते रहे, मगर ये जपते रहे, मेरे पास आते रहे और दान दक्षिणा देते रहे, मेरा जीवन कहानी रामायण पढ़ते रहे, ऐसे गुरुओं के पास नहीं जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने पहला क्या किया मालूम है? असत्यानन्वसतस्तम प्रज्ञावादंस्तद्भास से घटासन मगता। पहले डांटा, अरे अर्जुन तुम पंडित जैसे बातें कर रहा है, जिसके लिए रोना नहीं चाहिए उसके लिए रोता है। अभी सोचो माता पिता है और कोई बड़ा लड़का बड़ा बेटा है और बच्ची कुछ खेल रही है, छोटा सा बच्ची, उसकी खिलौना के लिए रोएगा तो माता क्या बोलेगी? कितना बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, खिलौने के लिए रो रहा है, ऐसे बोलेगी कि नहीं? ठीक वैसे कृष्ण ने जब भी गुरु जी का पदवी धारण किया, तुरंत बोला कि अरे पंडित जैसा कितना तर्क कर दिया, इसके लिए युद्ध नहीं करूंगा, उसके लिए युद्ध नहीं करूंगा, और जिसके लिए रोना नहीं चाहिए उसके लिए रोता है। ऐसे करके गीता को चालू करते हैं, और गीता को चालू करके सबसे पहला ज्ञान क्या देते हैं अर्जुन को? आत्मा का ज्ञान। कौन सा ज्ञान देते हैं? ये आत्मा का ज्ञान 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक बताते हैं श्री कृष्ण। और ये उसको और दो भाग करेंगे, तो एक 11 नंबर से 25 नंबर श्लोक तक शरीर और आत्मा का अंतर बताते हैं, और 26 से 30 नंबर तक नास्तिकवाद का वर्णन करते हैं। तो फिर ये आत्मा का ज्ञान क्या है वो थोड़ा देखेंगे हम, क्योंकि पूरी भगवद गीता देखना है ना दूसरे अध्याय में, तो पूरी भगवद गीता में यही है, ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है, तो ये तीनों चीजें दूसरे अध्याय में देखेंगे। तो अभी शुरू हुआ ज्ञान, ये जो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा और आत्मा और परमात्मा में जो संबंध है ये होता है ज्ञान, ये शुरू हुआ अभी, ये आत्मज्ञान शुरू करते हैं 12 नंबर श्लोक में। नत्वेवाहं जातु नासं नत्वेने मे जनाधिपा नातैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन तुम क्यों रो रहा है? सोच रहा है ये सब मारे जाएंगे करके ना? नहीं 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 नहीं, कैसे समझाते हैं बच्चों को? नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये लोग नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि ये लोग नहीं रहेंगे। ये लोग भी थे, आप भी थे, मैं भी था, अभी हैं, और आगे भी ये लोग रहेंगे, मैं भी रहूंगा और आप भी, अर्थात ये कभी नहीं मरते हैं, पहला बोलते हैं। क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहे थे? मैं मारूंगा तो सब मरे जाएंगे, है ना, ऐसे सोच रहे थे ना, इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि मरने वाला है नहीं, ये आत्मा का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा कभी भी मरता नहीं है, हम सबको मालूम है ना। फिर भी हम लोग डरते हैं ना, किसके लिए? मृत्यु के लिए। नॉलेज, ज्ञान और साक्षात्कार में अंतर है। हम लोग इस्कॉन में आते ही आत्मा का ज्ञान हम सबको होता है कि नहीं? कोई ना कोई बोलते हैं, कहीं ना कहीं सुनते हैं, मगर उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। उसका साक्षात्कार करना चाहिए, अर्थात ज्ञान होने के बाद उस ज्ञान के हिसाब से जीना चाहिए, उस ज्ञान के हिसाब से चलना चाहिए, उसी ज्ञान के हिसाब से मैं आत्मा हूं उस हिसाब से बोलना चाहिए, मैं आत्मा हूं उस हिसाब से खाना चाहिए और उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए। वो आगे आएगा इसी दूसरे अध्याय में, वो जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति कैसा रहता है, क्या बोलता है, क्या खाता है, वो सब आएगा उसमें, है ना। देखिए अच्छा, तो फिर ये कैसा है जो मरते हैं? अर्जुन उठा रहेगा, भगवान बोलते हैं कि अरे देही नौस्मिन यथा देह कौमारम जौवन, जैसे एक बच्चा होता है ना जन्म होने पर, फिर बाद में धीरे धीरे जवान होता है, फिर धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है, ठीक वैसे ही मरने के बाद दूसरा छोटा सा शरीर उसको मिल जाता है। ये मृत्यु का फिलोसफी है, ये मृत्यु का ज्ञान है। अगर ये ज्ञान किसी ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया मृत्यु के समय या किसी और की मृत्यु पर, उसको शोक नहीं होगा। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम जौवनम जरा, कौमारम कुमारावस्था, जौवनम जवानी, जरा मतलब बुढ़ापा। जैसे होता है हम रोते हैं क्या, हा? हमारा बच्चा छोटा सा था, कितना सुंदर दिखता था, टोपली बोली बोलता था, अभी जवान आ गया, मुझे आ गए, कॉलेज में जाने लगा, हमारा बात भी नहीं मानता, हम रोते हैं मेरा छोटा बच्चा कहाँ गया करके। ठीक वैसे हम लोग बूढ़े भी हो जाते हैं, अपना खुद का फोटो देखिए बचपन का और अभी, हम पहचान पाएंगे कितना अंतर होता है ना। इसका अर्थ क्या है, हमारा शरीर का परिवर्तन होता है। ऐसे मेडिकल साइंस के हिसाब से हर 6 साल में हमारा शारीरिक गठन बदल जाते हैं, कोशिकाएं बदलते रहते हैं हर क्षण। तो वैसे ही कुमार से जौवन, जौवन से बुढ़ापा, और तथा देहांतर प्राप्तिर, वैसे ही, तथा मतलब वैसे ही, देहांतर मतलब मृत्यु के बाद उसको प्राप्त होता है दूसरा शरीर, फिर छोटा सा बच्चे का शरीर मिलता है। अगर हम बचपन से जवानी हुआ रोया नहीं, जवानी से बूढ़ा हुआ फिर भी रोया नहीं, तो मृत्यु के बाद क्यों रोते हैं, दूसरा शरीर तो मिलने ही वाला है ना। समझ में आया, रोना चाहिए नहीं रोना चाहिए ना। मैं अर्जुन रो रहा था मैं इनको मार दूंगा करके, इसलिए भगवान ने बोला उसको। अच्छा लग रहा है समझने के लिए, मगर ऐसा जीने के लिए कठिन है। अच्छा अर्जुन बोला रहेगा ठीक है कृष्ण आपने बोला कि ठीक है वो जवान हुआ बूढ़ा हुआ मर गया दूसरा शरीर मिलेगा, मगर ये वाला शरीर तो नहीं मिलेगा, इतना पका हुआ दाढ़ी वाले बाबा जो भीष्म देव हैं, ये जो गुरुजी हैं, ये जो शरीर जिनका रिश्ता मेरे साथ का जो संबंध है ये शरीर से, वो तो नहीं मिलेगा ना, ऐसा भी बोला रहेगा है कि नहीं। क्योंकि देखो हम भक्त लोग भी सब लोगों का संबंध है, माता पिता सब है, हम सब भी भगवद गीता का ज्ञान जानते हैं, फिर भी मरने पर हमको दुख होता है ना, किसके लिए, वो शरीर के प्रति अपना आसक्ति है कि नहीं, दुख होता है। तो अर्जुन भी तर्क दिया रहेगा नहीं नहीं ये जो शरीर है ना उस शरीर के साथ मेरा आसक्ति है इसीलिए मैं नहीं मारूंगा। अरे अर्जुन मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दहा आगमा पाई नौ नित्य शांति तीक्ष भारत। हे अर्जुन जिस प्रकार से सर्दी गर्मी आता है और हम सहन करते हैं ना, ठीक वैसे ही सुख दुख भी आते रहते हैं। और जो धीर और गंभीर व्यक्ति है जैसे सर्दी गर्मी को सहन कर लेता है ना, सुख दुख को भी सहन कर लेना। अर्जुन बोला रहेगा मेरे को शरीर के साथ संबंध है, वो मर जाएगा तो मैं रोऊंगा नहीं नहीं, कभी कभी सर्दी गर्मी आता है हम सहन करते हैं ना गंभीर व्यक्ति, ठीक वैसे ये सुख दुख भी हमारा जीवन में आता ही रहेगा, तो हमको भी टॉलरेट करना चाहिए गंभीर व्यक्ति को, ऐसे करके भगवान उसको समझाते हैं। सही है कि नहीं, हम अगर सुख में एकदम उतले हो जाएंगे, दुख में एकदम दुखी हो जाएंगे, तो वो गंभीर व्यक्ति का, कृष्ण भावना मृत व्यक्ति का लक्षण नहीं है, कृष्ण भक्त का लक्षण नहीं है। एक बार एक मैंने सुना था, पढ़ा नहीं हूं, मगर एक भक्त कह रहे थे कि किसी ने जाके प्रभुपाद जी को बोला श्री प्रभुपाद एक भक्त बहुत दुखी है। प्रभुपाद जी ने बोला क्या, ना एक भक्त बहुत दुखी है। प्रभुपाद जी ने फिर से पूछा क्या, फिर वो भक्त चुप हो गए चले गए। अर्थात भक्त दुख के समय ना तो टूट पड़ता है ना सुख के समय ज्यादा उत्साह में आ जाता है, वो दोनों के समय वो बराबर स्थिति में रहता है, सुख और दुख को समान भाव से समझता है। वैसे हम सबको होना चाहिए, इसी बात को श्री कृष्ण समझाते हैं। जैसे सर्दी गर्मी है वैसे सुख दुख भी हमारे जीवन में आते रहते हैं, सभी के जीवन में आते हैं ना, सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं। क्या कोई ऐसे है मुझे दुख आना चाहिए, भगवान मुझे दुख आना चाहिए ऐसा बोलता है? नहीं है ना, सुख आना चाहिए सब बोलते हैं, फिर भी अपने को दुख आता है कि नहीं आता है। इसलिए ये दोनों समय पर हमको टॉलरेबल होना चाहिए। फिर उन्होंने 16 नंबर श्लोक में कहते हैं, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टानन्तस् अन्योस्तत्वदर्शी भी। देखो दो चीजों के बारे में ज्ञानी लोगों ने बोलते हैं, क्या है? एक है सत और एक है असत। सत मतलब जो कभी मरता नहीं है, असत मतलब जो हमेशा नाशवान है, मर जाएगा। तो वो सत क्या है? आत्मा है। असत क्या है? शरीर है। तो इस शरीर में दो चीजें हैं, सत भी है असत भी है। इसी शरीर में एक चीज है जो कभी नहीं मरेगा, वो क्या है? आत्मा। क्या नहीं मरेगा? हमारा आत्मा नहीं, हम नहीं मरेंगे, हमारा आत्मा नहीं, हमारा शरीर, क्योंकि हम कौन है? हम आत्मा ही है। कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, मेरी आत्मा नहीं है, मैं खुद ही आत्मा हूं। ये समझना चाहिए, हम भक्त लोग भी ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं, मेरी आत्मा है ना, मेरी आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा हूं, ये मेरी शरीर है, ये मेरा शरीर है। और जब भी हम सोचते हैं ना मेरी आत्मा करके बोलते हैं ना, उस समय क्या भाव आता है मालूम है? मैं ये शरीर हूं और मेरा आत्मा है शरीर के अंदर, ऐसा भाव आता है। वो भाव सही नहीं है, मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर नाशवान है और मैं कभी मरता नहीं हूं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमये शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन, ना तो ये कभी जन्म होता है, ना भी ना ही इसका कभी मृत्यु होता है। आत्मा कभी जन्म भी नहीं होता है, मरता भी नहीं है। तो फिर कैसे है? ये शाश्वत है, जब से श्री कृष्ण है ना तब से ये भी शाश्वत है। क्यों? क्योंकि ये कौन है? ये आत्मा भगवान कृष्ण के ही अंश है। ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव भूत जो है वो सनातन है, क्योंकि ये मेरी अंश है, कृष्ण स्वयं कहते हैं। तो हम सब श्री कृष्ण के अंश है, अतः हम शाश्वत हैं। अजो नित्य शाश्वत ओयम पुराण, सबसे पुराना भी है ये शरीर, नया मिलता है, बच्चे का शरीर नया है, फिर धीरे धीरे जाके बूढ़ा हो जाता है, मतलब पुराना हो गया है कि नहीं? मगर हम कभी पुराने नहीं होते हैं, हम शाश्वत हैं, नित्य हैं। मगर शरीर ये जो मृत्यु कैसा है मालूम है? कपड़ा बदलने जैसा है। मनसा शिजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नान्य अन्यानि सम्याति नवानि देहि। जैसे हम आज पहना हुआ कपड़ा कल बदल देते हैं ना, वैसे आत्मा क्या करता है? पुराना कपड़ा कौन सा है? बुरा शरीर। बुरा शरीर मतलब पुराना कपड़ा, आत्मा उसको छोड़ के नया शरीर को धारण करता है, ये नॉलेज है। और थोड़ा सा इसमें मैंने श्लोकों को लिया नहीं, फिर भी आत्मा के बारे में और कुछ बोलता हूं। ये आत्मा रहता कहां है? शास्त्रों में बताया गया ये हृदय में निवास करता है। हृदय कहां है? हमारा लेफ्ट साइड में, यहां पर रहता है ना, ये हम यहां पर रहते हैं आत्मा, इसलिए हम जेब यहीं पे सिलते हैं, पैसा इधर रखते हैं जो आत्मा के निकट। है कि नहीं? आत्मा ये यहां पे निवास करता है, आत्मा साथ साथ में परमात्मा निवास करते हैं। ये आत्मा के ऊपर दो शरीर, दो कवरिंग है, पहला है सूक्ष्म शरीर, दूसरा है स्थूल शरीर, ये जानकारी होना चाहिए। सूक्ष्म शरीर तीन चीजों से बनता है, मन बुद्धि अहंकार से, और स्थूल शरीर किससे बनता है? पंचभूतों से बनता है। ये पूरा हमारा शरीर का गठन है, असलियत में 24 तत्वों को लेकर हमारा शरीर बनता है, 24 एलिमेंट्स, खास करके 13वें अध्याय में बहुत अच्छी तरह से 24 तत्वों के बारे में भगवद गीता में बताया जाता है, नहीं तो भागवतों के तीसरे स्कंद में ये सारा ज्ञान थोड़ा थोड़ा हमारे पास होना चाहिए। और आत्मा दिखता कैसा है? दिखता नहीं है, क्योंकि अपना भौतिक आंखों को दिखेगा नहीं। फिर उसका रूप है कि नहीं? ना है। आत्मा का हाथ पैर कान नाक मुंह सब कुछ है, मगर उसका साइज क्या है मालूम है? केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। अगर बालों की अग्रभाग को लेके उसको कटिंग करेंगे, उसको 1000 टुकड़ा करेंगे, कितना छोटा होएगा? ये आत्मा का साइज है। फिर भी उसका दो पैर है, दो हाथ है, दो आंख है, एक नाक है, कान है, सब कुछ है, सब कुछ है आत्मा का। ये आत्मा है और हम हैं और इस शरीर में रहते हैं। इस स्थूल शरीर में भौतिक संसार में दो कवरिंग होने के वजह से हमारा शक्ति हमको पता नहीं लगता है। और आत्मा बनता कैसे है? सत चित और आनंद से। भगवान कैसे बने हुए? सत चित और आनंद से। हम भी सच्चिदानंद है, मगर हम कैसे, क्यों सच्चिदानंद है? क्योंकि हम श्री कृष्ण के ही, परंतु वह विभु है, हम अणु है, मात्रा में अंतर है। जैसे समुद्र की पानी और एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेके आएंगे, दोनों खारा रहेगा, मगर एक ग्लास में है और वो पूरा समुद्र है, वैसे भगवान है और हम हैं। इसीलिए इस बात को ठीक से न जान पाने के कारण बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आत्मा भी परम आत्मा ही परमात्मा है, और ये आगे जाके परमात्मा में लीन हो जाएंगे, एक हो जाएगा। हाँ, पिछली बार रविवार को क्लास देते समय एक बूढ़ा व्यक्ति हमसे तर्क किए, बोलते कि जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं बोला हरे कृष्ण जपने का और मंदिर में झाड़ू मारने का। उनको बहुत गुस्सा है, लोग मजाक करते हैं। मैं बोला नहीं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही श्री कृष्ण की सेवा करना है। अलग श्री कृष्ण की सेवा करना, श्री कृष्ण कौन है? मैं बोला परमात्मा। ना हम भी परमात्मा है? मैं बोला हाँ, मुझे अभी समझ में आ गया। तो लोग ऐसे सोचते हैं, क्यों मालूम है? इस शास्त्र में उन श्लोकों की इस प्रकार का अनुवाद किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, इसलिए हमको शास्त्र भी पढ़ना है तो सही शिक्षक के द्वारा प्रभुपाद जी की गीता को ही पढ़ना चाहिए। इसलिए उनको बोला महाशय कृपया आप भगवद गीता पढ़िए। ना मैंने पूरा पढ़ा। नहीं, आपने पढ़ा नहीं, भगवद गीता यथारूप पढ़िए, तब वो समझेगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए ये आत्मा एकदम शुद्र है, जो हमारे भौतिक चक्षु को दिखने वाला नहीं है, मगर ये बहुत पावरफुल है, सच्चिदानंद है, शाश्वत है, चित मतलब संपूर्ण ज्ञान इसके पास है, और हमेशा आनंद में रहना चाहता है, आनंदमय के साथ। इसीलिए देखो, हम कभी भी दुखी होना चाहते हैं क्या? हमेशा खुश में रहना चाहते हैं ना? क्यों? हमारा नेचर है, सच्चिदानंद है ना, आनंद हमारा गुण है, नेचर है वो। इसलिए हम हमेशा आनंद को ही ढूंढते रहते हैं, दुख की परिस्थिति हमको अच्छा नहीं लगता है। हर एक जीव, हर एक व्यक्ति देखो, वो सुख ही चाहता रहेगा, मगर समस्या यह है कि इस संसार में सुख मिलने वाला गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं हम लोग। पता है गीता में सुने प्रभु जी बोलते हैं, फिर भी बाहर जाके वही करते हैं, वही ढूंढते हैं किधर से मिल जाएगा थोड़ा बहुत आनंद। दुखालयम शाश्वतम सुखालयम ऐसा नहीं लिखा भगवान ने, दुखालयम करके बोला। यहाँ पे दुख ही मिलने वाला है, अतः हमें समझना चाहिए सुख अगर मिलेगा तो सही व्यक्ति की सेवा से, है ना। तो ये ज्ञान है, यहां तक समझाने के बाद, अच्छा ये जो ज्ञान है इसी को सांख्य योग कहा जाता है। सांख्य योग का अर्थ है आत्मा परमात्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन को सांख्य योग कहा गया। यानी जिस अध्ययन के द्वारा शरीर में निवास करने वाली आत्मा और परमात्मा के बारे में जाना जाता है, उसी अध्ययन को सांख्य योग कहा गया है, और उसी को ज्ञान योग कहा जाता है। तो अभी तक ज्ञान योग चल रहा है, अभी अर्जुन समझ गया ठीक है आत्मा है। कभी कभी लोग ऐसे भी तर्क करते हैं ना, भाई हम आत्मा भात्मा कुछ नहीं मानते हैं, व्यक्ति मर गया तो खत्म बात, बोलते हैं ना ऐसा, मर गया उसके साथ सब खत्म, हम आत्मा को, ये नास्तिक बाद है। तो भगवान ने सोचे, अर्जुन ऐसा भी सोचता रहेगा ना कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूं, ऐसा भी सोचता रहेगा, इसलिए भगवान ने थोड़ा सा नास्तिक बाद के बारे में बोलते हैं। मान लीजिए अर्जुन ने ऐसा सोचा कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूं, मैं आत्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं करता हूं, व्यक्ति जन्म हुआ और मर गया सब कुछ खत्म, इसलिए मैं मारूंगा तो ये लोग दोबारा मिलने वाले है नहीं। भगवान कहते हैं अगर तुम ऐसा भी सोचते हो ना, फिर भी तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जातक से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु, क्योंकि जन्म होने वाला एक दिन मरने ही वाला है। इसलिए तस्माद अपरिहार्य अर्थ है न तुम सोचित अर्हसी, इसलिए हे अर्जुन तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जन्म हुआ हो तो मरेगा है ना, भले ही आत्मा के बारे में तुम ना सोचो। अथ चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्यते मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोचित अर्हसी अथम चैनम नित्य जातम। अगर सोचते हो इसका जन्म होता है आत्मा का और मर जाता है, क्योंकि पहले भगवान ने क्या बोला आत्मा कभी जन्म नहीं होता है मरता नहीं है ना, मगर अगर अर्जुन सोचता है कि जन्म भी होता है मरता भी है तभी भी हमको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जन्म होता है वो हमेशा मरता ही है। ये थोड़ा सा नास्तिक बात वहां पे थोड़ा सा कृष्ण देते हैं अर्जुन को कन्विंस करने के लिए। तो यहां तक 27 नंबर श्लोक तक जो है 27, 28, 29, 30 नंबर श्लोक तक जो है ये ज्ञान के बारे में बताया गया। ये आत्मा का ज्ञान समझ में आया, आत्मा शाश्वत है, शरीर मरणशील है ना, हमेशा मरता रहता है, आत्मा नित्य है, शरीर नित्य नहीं है ना, आत्मा परमात्मा की अंश है, ये सच्चिदानंद है, ये एक एक बाल के अग्रभाग की हजारवां हिस्सा 10,000वें हिस्सा की बराबर है कि नहीं, रहता कहाँ पे, हमारे हृदय में। शरीर भौतिक तत्वों से बनता है, ये हमेशा बदलता रहता है, जैसे बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, वैसे बुढ़ापा भी मर जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर नया शरीर मिलता है। समझ में आया दोनों में अंतर, आत्मा में और शरीर में? इसी को सांख्य योग या ज्ञान योग कहा जाता है। यहां तक भगवान ने ज्ञान योग के बारे में समझाया। और जो अर्जुन का तर्क था ना कि मैं आपसे लोगों को कैसे मारूंगा करके, ये 30 श्लोकों से अर्जुन का तर्क को खंडन किया भगवान ने। तो अर्जुन समझा ऐसा है क्या, ठीक है ठीक है। मगर उसके बाद भी अर्जुन का क्या डाउट था, मैं भोग नहीं कर पाऊंगा है कि नहीं, मुझे क्या लाभ होगा इन लोगों को मार के, क्योंकि सब तो मारे जाएंगे। इसके लिए बाद में कर्मकांड के बारे में बताते हैं। ये कर्मकांड शब्द आप लोगों ने सब सुना रहेगा, कितने लोगों ने सुना कर्मकांड, सुना है ना, मगर उसका अर्थ मालूम है क्या, सुना है कर्मकांड। देखिए वहां लिखा है भौतिक लाभ की इच्छा से स्वधर्म का पालन करना उसे कर्मकांड कहा गया है। किसके इच्छा से, भौतिक लाभ की, स्वधर्म का पालन करना। कर्मकांड का दोनों तोड़ दो, कर्म मतलब काम करना, कौन सा काम करना, जो वेदों में करने के लिए बोला गया वो काम करना, मगर क्यों करना, कुछ प्रॉफिट की इच्छा से करना, कुछ लाभ मिल जाए करके करना है ना। मैं शिव जी के मंदिर में जाके 1008 बेलपत्ता चढ़ाऊंगा, शिवरात्रि को उपासना करेगा, कहीं पे तो मैं पढ़ रहा था, माताएं करेंगे किसके लिए, उनको शिव जी जैसा अच्छा पति मिलना चाहिए, कर्मकांड। और कई सारे यज्ञ करते हैं ना हम लोगों ने, घर ब्राह्मणों को बुला के, उसके पीछे उद्देश्य रहता है कि ये यज्ञ करने पर ये फायदा मुझे होना चाहिए, वो कर्मकांड है। कई सारे लोग हैं है ना, ऐसे अपने हरे कृष्णा वाले भी कुछ लोग हैं, दूसरे दूसरे घरों में कर्मकांड करने भी जाते हैं कराने के लिए, नहीं करना चाहिए, नहीं कराना भी चाहिए। जो जाते हैं पैसों की लाभ की इच्छा से, और जो कराते हैं उनको और कुछ प्रॉफिट का पाने की इच्छा से, है ना। कर्मकांड, कर्मकांड का अर्थ यही है, कुछ फायदे की इच्छा से कुछ काम करते हैं तो वो कर्मकांड है। क्योंकि अर्जुन बोला था ना मैं युद्ध करूंगा तो क्या फायदा होगा, सब नुकसान नुकसान होने वाला है, इसलिए भगवान अभी समझाएंगे उसको। देखिए उस श्लोक में हरे कृष्णा, स्वधर्मामपि चादेक्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्य युद्धस्य क्षत्रियस्य न विद्यते, स्वधर्मम अपि चादेक्य न विकम्पितुम् अर्हसि है ना। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, क्षत मतलब चोट, नागरिकों को, प्रजाओं को जो व्यक्ति चोट से बचाता है, कष्टों से बचाता है, वो क्षत्रिय है। तो अर्जुन अभी पूरा हस्तिनापुर किसके हाथ में है, दुर्योधन के हाथ में, दुर्योधन अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो अर्जुन के लिए ड्यूटी यानी उसका स्वधर्म क्या है, दुर्योधन के हाथ से बचाना लोगों को, है कि नहीं। तो उसको ये ड्यूटी करना चाहिए, स्वधर्म, अपना धर्म को हमेशा करना चाहिए। अगर अपने धर्म को व्यक्ति नहीं करता है तो फिर उसको पाप लगता है, तो फिर उसको पाप लो पाप लगता है। कृष्ण बोल रहे थे, अर्जुन बोल रहा था मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, अर्जुन कृष्ण और कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपना कर्तव्य छोड़ता है, कोई गृहस्थ है, वो अगर पति वो अगर पत्नी बच्चों का देखभाल करना माता पिता का देखभाल करने का अगर त्याग देता है तो उसको पाप लगेगा, क्योंकि वो उसका स्वधर्म है। कोई ब्राह्मण है अगर उसको मंत्र पाठ करना पूजा विधि करना शास्त्रों का अध्ययन करना छोड़ता है तो उसको पाप लगेगा। अपना कर्तव्य को त्यागना, स्वधर्म मतलब कर्तव्य शास्त्रानुमोदित, उसको त्याग करना स्वधर्म का त्याग करना, और स्वधर्म का त्याग करने पर पाप लगता है। स्वधर्म को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। दो प्रकार के स्वधर्म के बारे में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए यहां पर, जब तक मनुष्य मुक्ति नहीं हो जाता है तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करना होता है, और जब तक मुक्त हो जाता है उसके लिए विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है। एक बात बताऊं, एक उदाहरण, माधवेंद्र पुरीपाद जी को हम सब जानते हैं ना, ये कौन है, श्री संप्रदाय के एक आचार्य थे ना माधवेंद्र पुरी, कौन है माधवेंद्र पुरीपाद, ईश्वरपुरी के गुरु जी है कि नहीं, ये हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में ही है। माधवेंद्र पुरी एक श्लोक कहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, हे स्नान और हे मेरे नित्य कर्म और हे मेरे पिंड दान इत्यादि, मैं आप लोगों को पालन नहीं कर सकता, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं उठता हूं बैठता हूं सोता हूं तो मेरे मन में हमेशा वो कंस को मारने वाला कृष्ण के बारे में ही मेरे मन में आता है, मैं उनका स्मरण करता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों का पालन नहीं करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा उद्धार उनकी स्मरण में हो जाता है। ये माधवेंद्रपुरी कहते हैं, ये कौन से स्तर में, जब व्यक्ति इस भौतिक स्तरों से ऊपर उठ जाता है मुक्त हो जाता है तभी। जब तक हमारा अंदर शारीरिक भावना शरीर के प्रति आसक्ति है तब तक हमको स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। कभी कभी हरे कृष्णा में आने के बाद हम लोग सुनते हैं हरे कृष्णा महामंत्र सर्वश्रेष्ठ कृष्णा भक्ति सर्वश्रेष्ठ, बाकी कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है, ये सत्य है, परंतु गृहस्थ अगर कोई संपूर्ण छोड़ के आश्रम ज्वाइन करता है अपने जीवन को पूरा और श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है तो उसके बाद अलग, मगर अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो उसको सारे संस्कारों को पालन करना चाहिए, पिंडदान संस्कार या घर में जितने दस विध संस्कार होता है इन सारे संस्कार पालन करना चाहिए। जैसे किसी का देहांत हुआ उस समय सूतक का पालन करना चाहिए, माताओं को अपवित्रता के समय पे उनको पालन करना चाहिए, क्योंकि हमने एक बहुत गंभीर बातें देखे हैं, इसी समय में उन लोगों ने भगवान की पूजा विधि भी कर लेते हैं, उनको भोग भी लगाते हैं, ये सब अच्छा नहीं है, है ना। हमने कुंभदास सोल से भी बात किया, फिर बाद में सनातन गोस्वामी कुछ ग्रंथ में भी पढ़ा, अगर ऐसा होता सत्क्रिया सार दीपिका क्यों लिखा गया वैष्णवों के लिए, ये संस्कारों को करने के लिए, हम हरे कृष्णा हम वाले हो गए, कृष्ण भक्ति सबसे बढ़कर है, हम ये सब छोड़ देंगे, क्या तुम शारीरिक स्तर से ऊंचे हो, इंद्रिय भोग से सब पूर्ण निवृत्त हो गए हम लोग, क्या हमारे परिवार वालों को कुछ होता है तो हमको दुख नहीं होता है। जब तक शारीरिक आसक्ति है तब तक हमें इन सारे ड्यूटीज को निभाना ही चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यों को देखिए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी वो गृहस्थ ही थे मगर उन्होंने सारे परिवार के नियमों को पालन किया करते थे, क्यों, यद यद आचरति तत् 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 दे बेहतर वजन, अगर वो नहीं करते तो अभी भी बहुत सारे लोग गुल्ली मारते, इसीलिए पालन करते थे। अतः हमें कभी इस स्वधर्म को त्याग सकते हैं शारीरिक स्वधर्म को, जब भी हम इस शारीरिक स्तर से ऊपर उठ जाते हैं, शारीरिक कोई सारे चिंताओं से ऊपर उठ जाते हैं तभी हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो शारीरिक सारे नियमों को स्वधर्मों को पालन करना चाहिए व्यक्ति को। इसीलिए प्रभुपाद जी दो अलग अलग बताते हैं कि दो प्रकार के स्वधर्म है करके ना? एक उदाहरण है, सुबह ही बतला रहे थे जड़ भारत का, जड़ भारत वो हमेशा ट्रांसेंडेंटल रहते थे, है ना, उन जो कृष्ण भावनामृत हुआ करते थे वो, मगर उनके पिताजी जबरदस्ती उनको वेदों का श्लोक सिखाया करते थे ना, मगर वो बोलेंगे तो वो आव करते थे, उल्टा बोलते थे, मंत्र नहीं बोलते थे, हालांकि ब्राह्मण के हिसाब से जड़ भारत को उन श्लोकों को सीखना चाहिए था, ये उनका स्वधर्म था, मगर वो नहीं सीख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो इन सबसे परे थे। श्री हमेशा श्री कृष्ण भावनामृत ट्रांसेंडेंटल स्तर तक हुआ करते थे, इसीलिए इसलिए स्वधर्म को नहीं करते थे। जैसे माधवेंद्रपुरी का उदाहरण दिया मैंने, एक बार व्यक्ति वो ऐसे स्तर में चला जाता है तो उसके लिए कोई नियम पालन करने के लिए आवश्यकता नहीं रह जाता है, जैसे 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है। नहीं तो हमें स्वधर्म पालन करना ही चाहिए, नियमों को घरों में पालन करना ही चाहिए। एक चीज के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो क्या है बता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम नाम कारी बहुदा निज सर्व शक्ति। इसके लिए कोई नियम नहीं, कोई भी समय कोई भी काल कोई भी परिस्थिति वो जप कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, श्री विग्रह की उपासना नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, उनको भोग नहीं लगा सकते। ये सारे चीजों का हमको पालन करना ही चाहिए अपवित्रता के समय पर। अच्छा, स्वधर्म का पालन करने से फायदा क्या होगा? अर्जुन ये सोचा रहेगा ना, अच्छा मैं युद्ध करूंगा फायदा क्या? ये फायदा, यदृच्छया चोपपत्रम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लवन्ते युद्धमादिशम। अगर तुम युद्ध करते करते मर जाओगे ना, कहां जाओ मालूम है? स्वर्ग में जाओगे। और अगर तुम जीत जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा? ये पूरा पृथ्वी तुम्हारा राज्य बन जाएगा, तुम राजा बन जाओगे। तो दोनों तरफ से प्रॉफिट है, मरोगे स्वर्ग जाओगे, जीतोगे तो यहां पे राजा बनोगे। फायदा है कि नहीं? नुकसान है ही नहीं, एक फायदा। दूसरा क्या? हाँ, हतो वा प्राप्ति से स्वर्गम जीतो वा भक्षबे मही तस्माद उत्तिष्ठ कौनते ये युद्धाय कृत निश्चय। जीतोगे तो स्वर्ग जाओगे, हारोगे तो राजा बन जाओगे, इसलिए खड़े हो जाओ, धनु लेके युद्ध करो कृष्ण कहते हैं। इसलिए स्वधर्म का पालन करते करते अगर व्यक्ति शरीर को त्यागता है ना, उसको स्वर्ग मिलता है। 2 साल पहले मीरा रोड स्टेशन में गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, एक मुसलमान व्यक्ति तर्क करने लगे, युद्ध करना चाहिए। मैं लगे क्या मतलब? नहीं, जब तक मारेंगे नहीं तब तक जन्नत नहीं मिलेगा। लगे ऐसा नहीं होता है, किसी भी जीव का हत्या नहीं कर सकते हैं, तुम्हारा भगवान ही बोलता है कि मारोगे तो तभी जन्नत मिलेगा। मैं बोला क्या बात करते हो। उसने भगवत गीता हमारे पास का पलटा ये श्लोक निकाल के दिखाया, देखो मारने पर स्वर्ग मिलेगा करके बोलते हैं कृष्ण, अगर मारते मारते मर जाओगे तो। इसलिए हम लोग मारते, ऐसे उनके दिमाग में घुसा हुआ है। सोचो, मैं बोला कि आगे और कुछ पढ़ा है कि नहीं? आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, इसमें तो साफ साफ लिखा है ना, अर्ध कुकुट न्याय ऐसा कुछ है ना, आधा मुर्गी हो सोना अंडा देता है तो उसको रखेगा, बाकी काट के फेंक देगा, वो थोड़े सोना अंडा देने वाला। तो ये फायदा है। अच्छा, नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा? अगर अपना स्वधर्म नहीं करेगा अर्जुन, अर्जुन बोलेगा अच्छा मैं करूंगा नहीं तो, अच्छा तुम करोगे नहीं तो ये सारे नुकसान है। क्या क्या नुकसान होगा मैं बोल देता हूं। देखो, नहीं करोगे ना सब लोग तुमको कायर बोलेंगे। अर्जुन ने कायर बोलेंगे तो क्या, तुम्हारा कितना नाम है, बहुत बड़ा योद्धा है करके, शिव जी भी तुमसे प्रसन्न होकर तुमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है करके बोले हैं, द्रोणाचार्य भी घोषणा किया है अर्जुन जैसा धनुर्धारी कोई नहीं है, भीष्म देव हमेशा ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि मेरा पोता अर्जुन के बढ़कर कोई नहीं है, कर्ण हमेशा चिढ़ता रहता है, और तुम अचानक युद्ध क्षेत्र में युद्ध नहीं करोगे तो सब लोग क्या बोलेंगे? कायर, अर्जुन कायर है। दुर्योधन ये नहीं सोचेगा तू भाई को मारेगा नहीं, करुणा आ गया अर्जुन को, ये नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि हमारा इतने सारे लोगों को देख, खास करके मेरा दोस्त जो है ना मित्र कर्ण को देख के डर गया अर्जुन ने, ऐसे सोचेंगे। और सम्मानित व्यक्ति के लिए ना अपमान मृत्यु के बराबर है, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु के बराबर है। वो कथा मालूम है ना, एक बार कर्ण के घायल कर दिया युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज वापस आ गए युद्ध छोड़ के, और अर्जुन सुने दौड़ के आए युधिष्ठिर महाराज को देखने के लिए। युधिष्ठिर महाराज पूछे कि हे अर्जुन, क्या कर्ण मर गया क्या, आप आ गए युद्ध छोड़ के? ना नहीं नहीं मैं आपको तो देखने आया हूं, आप घायल हो गए करके। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते कि दिख तुम्हारा गांडीव, अभी तक अर्जुन कर्ण का वध नहीं हुआ। अर्जुन ने शपथ ले रखा था कि जिसने भी मेरे गांडीव का अपमान करेगा मैं उसका गला उड़ा दूंगा, गर्दन उड़ा दूंगा। अभी युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा बोल दिया तो अर्जुन तुरंत तलवार निकाला, तब भगवान वहां पे आ गए। कृष्ण बोले कि क्या कर रहे हो, बोला कि कृष्ण आपको पता है मैंने क्या शपथ लिया, और क्षत्रिय एक बार वचन देते हैं तो पूरा करते हैं, हम तो हजार बार भी वचन देते ही रहते हैं, है कि नहीं। तो फिर कलयुग है ना, तो फिर कृष्ण बोले कि अपमान कर दो, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान, इसलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। अपमान जैसा शब्द बोलना नहीं चाहिए, अपमानित करना नहीं चाहिए व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में, ना लोगों के सामने खासकर। तो इस प्रकार से तुम्हारा अपमान होगा, और अपमान सुनने से अच्छा है कि मर जाना युद्ध में, और अपयश करेगा, और तुम ना अपना ड्यूटी नहीं करोगे करके तो सबसे पहले तुम नरक में जाओगे, अगर अपना स्वधर्म पालन नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, इतना बताते हैं। करोगे दोनों तरफ फायदा, जीतोगे तो राजा बन जाओगे, हारोगे तो स्वर्ग, नहीं करोगे तो पाप लगेगा, नरक में जाओगे, तुम्हारा अपयश फैलेगा, सब लोग तुम्हारा निंदा, यह है कर्मकांड। मतलब कर्मकांड मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, फायदा होगा करने पर, ना करने पर नुकसान होगा, वो कर्मकांड है, समझ रहे ना। इसीलिए कोई ज्योतिष शास्त्री के पास, कोई ब्राह्मण के पास जाएंगे ना, तुमको ये शनि लगा है और ये ग्रह अभी चल रहा है, 10 दिन के बाद ये घर निकल जाएगा, इसके लिए तुमको नाग यज्ञ, ये शनिचर का यज्ञ, वो यज्ञ करना पड़ेगा, करेगा तो ये प्रॉफिट होगा, तुम्हारा शांति हो जाएगा सब कुछ। ये सब में असलियत में ज्योतिष शास्त्र सही है, वो वेद का ही अंश है, मगर कलयुग में सब कुछ बोगस है। हरे कृष्णा महामंत्र ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए हमको एकदम दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए हरे कृष्णा महामंत्र के प्रति। फिर बाद में यहाँ पर बुद्धि योग के बारे में कृष्ण बोलना चालू करते हैं। सांख्यो अभी भगवान कहते हैं ऐसा अभी तक के बुद्धि योगे त्रिमाम सुनो बुद्धिया युक्त तो यह पार्थ कर्म बंधन प्रयास। अभी तक मैंने सांख्य योग बोला, अभी बुद्धि योग सुनो। मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, टाइम हो गया। बुद्धि योग मतलब क्या है, बुद्धि योग मतलब नीचे लिखा गया है, देखिए, ज्ञान, अभी तक जो ज्ञान सुना, कर्म, जो कर्म के बारे में अभी बोला, ये दोनों को मिलाने से उसको निष्काम कर्म बोला जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करना मगर फल की इच्छा न करना, और उसी को बुद्धि योग कहा गया है। विद्याभूषण ने, बलदेव विद्याभूषण प्रभु और श्रील प्रभुपद, इन आचार्यों ने इस बुद्धि योग को ही भक्ति योग करके बताते हैं। अर्थात हमें अगर कर्म करना है, किसके लिए कर्म, कैसे कर्म करना चाहिए, निष्काम भाव से, यानी जो काम करेंगे उससे कुछ प्रॉफिट होना चाहिए करके इच्छा ना रखते हुए हमें कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म हम लोग अपने कंपनी में नहीं कर सकते हैं। कंपनी में करेंगे क्या, महीने भर काम करेंगे, सेठ जी आप पगार नहीं देते तो चलेगा, ऐसा हो सकता है नहीं। वो हमारा पेट की भरण पोषण के लिए उसको चालू रखना है, क्योंकि शरीर रहेगा तभी अपना हरे कृष्णा चलता रहेगा। तो निष्काम कर्म, श्री कृष्ण की भक्ति, मंदिर में आके सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, इन सारे सेवाओं निष्काम भाव से करना चाहिए, कोई प्रॉफिट की आशा करते हुए नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं एक नारियल फोड़ा शिव जी के सामने और शिव जी मेरा ये एग्जाम पास होना चाहिए, वैसे राधा गिरधारी के सामने आके एक दर्जन केला रख दोगे, बोलो कि भगवान मेरा वो काम हो जाना चाहिए, ऐसा भक्ति नहीं है ना। वो सकाम भक्ति बोलते हैं, कुछ प्रॉफिट की इच्छा से उसको कहा जाता है, वो शुद्ध भक्ति नहीं। निष्काम भाव से चाहिए, उसी बुद्धि योग कहा गया है, और वही निष्काम कर्म है। प्रभुपाद कहते हैं यही भक्ति योग है। मनुष्य को ये जान लेना चाहिए, वहां पे वो नहीं है, जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावना मृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। इसका फायदा क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भक्ति योग का, इस मार्ग में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। हम कोई भी व्यापार चालू करते उसमें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है कि नहीं। मगर ये एक ऐसा व्यापार है हरे कृष्णा जपने का, इस्कॉन में आने का, नुकसान किसी भी प्रकार का नहीं है। कुछ नहीं समझ में आया तो कम से कम तुमको भरपेट खाने के लिए मिलेगा प्रसाद है कि नहीं, और वो भी फायदा ही करने वाला है ना। प्रसाद है सर्व दुखानम यानी रस्य उपजायते, सबको धारण कर लेगा वो। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करता है। थोड़ा सा भी किसी ने किया ना ये काम, तो बहुत बड़ा विपत्ति से उसको बचा देगा। और श्लोक है 40 नंबर, नेह विक्रमण स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, ये जो भक्ति योग निष्काम कर्म कृष्ण भक्ति थोड़ा सा भी करते हैं ना, बहुत बड़ा विपत्ति से बचा देगा अपने को। बाकी कोई भी काम थोड़ा करके नहीं चलने वाला। आप कोई व्यापार शुरू किए हैं, थोड़ा पैसा लगाए हैं, थोड़ी दिन चलाएंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ करके बंद कर देंगे, उसका कुछ फायदा होने वाला है? लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट होने तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। मगर ये काम ऐसा है कि शुरू करते करने से ही फायदा है। थोड़ा सा भी किया और छूट गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसे बैंक में जमा रहेगा तुम्हारा। और फायदा क्या करेगा? बहुत बड़ा विपत्ति से बचाएगा। तो बहुत बड़ा विपत्ति क्या है हमारे लिए? सबसे बड़ा विपत्ति क्या है मालूम है? 2012 प्रलय आने वाला है ना? नहीं, बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा विपत्ति है। अभी ये न कहना प्रकार है ना, मनुष्य योनि मिल गया, इसी जीवन में हम भक्ति कर सकते हैं। अगर ठीक से भक्ति का पालन नहीं किए, क्या मालूम हम फिर से 84 लाख योनि में। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी एक बार भी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 अगर जप करता है ना, एक बार भी थोड़ा सा भी किया है ना, उसको ये भूल जाना चाहिए, ये डर को तो निकाल देना चाहिए मन से कि मैं दोबारा कोई दूसरे में जाऊंगा करके, दूसरे कोई नहीं जन्म में जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा, इसलिए प्रभुपाद जी और उसमें बताया गया, यह हमें संसार चक्र की निम्न योनियों में जन्म लेने से बचा देता है। यह स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, यह बहुत बड़ा भय है दूसरे योनि में गिर जाना। क्योंकि हम सबको मालूम है हम कितने उत्पटांग कार्य किए हुए हैं पूरे जीवन में, है कि नहीं, है ना? तो पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे भटक जाएंगे फिर से। मगर इतना पक्का है कि एक बार प्रभुपाद जी के शरण में आके हरे कृष्ण में बैठ गए ना, तब ये डाउट तो निकाल देना चाहिए कि दूसरे जोनी में जाना ही नहीं है मेरे को। हाँ, मनुष्य जोनी तो पक्का मिलने वाला है कि नहीं? मगर ट्राई करना चाहिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो, क्योंकि पता नहीं मनुष्य जीवन भी भूल गए रहेंगे, सही वातावरण मिलेगा कि नहीं, है ना? इस्कॉन मिरर रोड के बाजू में जन्म होगा कि कहीं और हो जाएगा तो दूर हो जाएगा, है ना? नाला सपरा में किधर हो जाएगा, गाड़ी में आने के लिए प्रॉब्लम होएगा फिर, इसलिए बेस्ट है कि अभी कर लें हरे कृष्ण ना। तो ये भक्ति योग है, या इसी को बुद्धि योग कहते हैं। फिर बाद में अर्जुन ने ऐसे लोगों का लक्षण के बारे में पूछते हैं 54 नंबर श्लोक में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, लक्षण क्या है, समाधि तस्य केशव, स्थित जी किम प्रभासी, तो क्या बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। फिर भगवान कृष्ण ने आगे 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 उनका उत्तर देते हैं। इस प्रकार से पूरा दूसरा अध्याय खत्म होता है 72 नंबर श्लोक में। 72 नंबर श्लोक में क्या बताया गया देखिए, बहुत सुंदर चीज बताया गया। ऐसा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्त विमुह्यति, स्थित्वस्यामंत कालोपि ब्रह्म निर्वाणम उच्यति। अगर इस भक्ति योग के बारे में बताते हैं कृष्ण यहाँ पे, ऐसे अगर कोई जिंदगी भर नहीं पालन कर पाया, मरते समय अगर शरीर छूटते समय भी कोई भी इस कृष्ण भक्ति कर लेता है, यानी एक बार भी मरते समय भी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम याद भी कर लेता है कि हरे कृष्णा जपना चाहिए करके मुझे, तब पर भी अंतकालोपि ब्रह्म निर्वाणम उच्यति। अंतकाल में भी कोई अगर इस भक्तियों का पालन थोड़ा सा कर लेता है, तब पर भी उसको ब्रह्म निर्वाण यानी भगवत धाम मिल जाता है। ये भक्ति है। तो इस प्रकार से सेकेंड चैप्टर में ज्ञान आत्मा और परमात्मा का, और कर्म श्री कृष्ण की सेवा, और भक्ति अंत में भगवत धाम की प्राप्ति के बारे में पूरी भगवत गीता का सार जो है दूसरे अध्याय में वो रखा गया है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये पूरे दूसरे अध्याय में पूरा गीता का सार को इकट्ठा किया गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। याद हो गया सब लोगों को? फिर से बोलता हूं, ज्ञान मतलब आत्मा और शरीर की भेद का ज्ञान। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है, ये ज्ञान है, इसको ज्ञान योग कहते हैं। इस ज्ञान के हिसाब से कर्म करना उसको निष्काम कर्म या कर्मयोग कहते हैं, और इसी निष्काम कर्म को ही भक्ति योग कहते हैं। ये भक्ति को अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय में अंत काल में भी थोड़ा सा करता है तब पर भी उसको ब्रह्म निर्वाण मृक्षति कृष्ण भक्ति या भगवत धाम प्राप्त होता है। इसको याद रखना चाहिए, यही आज की ये जो सन का सार है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। कुछ अनाउंसमेंट्स है, अगले रविवार को प्रसाद बनाने एवं वितरण करने की सेवा है हिज ग्रेस लक्ष्मीधर प्रभु और कृष्ण मेघा प्रभु के काउंट